शांति।
उषा बहन जी के स्थान पर हमें यहाँ सामने देख करके शायद थोड़ी हलचल हुई, लेकिन ड्रामा फिक्स है। उषा बहन जी को अचानक से वलसाड़ जाना पड़ा है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी जगह की पूर्ति हम कर रहे हैं। थैंक यू। आज का हमारा विषय है विपरीत परिस्थितियों के बीच हम अपनी अवस्था की रक्षा कैसे करें। जैसे जैसे समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साकार के समय से जो बातों का इशारा हमें मिला है, धीरे धीरे हम प्रत्यक्ष रूप में उन परिस्थितियों को देख रहे हैं। शुरू शुरू में जब 70s की मुरली चली, अव्यक्त मुरलियां, उसमें बहुत सारी बातें इशारे के रूप में बाबा ने दी हुई है। जैसे मिसाल बाबा ने कहा कि अंतिम समय जब नजदीक आएगा तो परिस्थितियां ऐसी डेवलप होगी जो हम चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी बात, आज प्रैक्टिकली हम ये स्थिति को देख रहे हैं। आज हमारे पास गैजेट्स बढ़ गए हैं, उस समय में तो मुरलियों की जेरोक्स मिलना इतना इजी नहीं था। आजकल तो हरेक के मोबाइल में मुरलियां मिलती है, इतने गैजेट्स अवेलेबल है, इतने साधन अवेलेबल है, जब देखो तब वो फैंसी कान में लगा हुआ है, अपने में व्यस्त है, पूछो क्या सुन रहे हैं, कोई ना कोई यूट्यूब पर क्लास सुन रहे हैं। कितना सारा अवेलेबल है हमारे पास, फिर भी अगर हम खुद अपने अंदर जाकर अपनी अवस्था की मजबूती को देखें। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं, सेंटर भी स्थापन किया, फिर भी आज भागंती हो गई हैं, चली गई है। इसका मतलब वो अपनी अवस्था की रक्षा नहीं कर पाए। या अपने पुरुषार्थी जीवन में वे बैलेंस नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ, अवस्था में हलचल आई और माया आते ही सबसे पहले निशानी मुरली से प्रीत तुड़वाती है। ये माया की सबसे पहली निशानी है, पता भी नहीं चलता है। पहले रोज क्लास में बिल्कुल पंक्चुअल होकर के हाजिर होते थे, अभी धीरे धीरे पूछो तो जवाब देंगे, हमने ज्ञान छोड़ा नहीं है, अभी कुछ हमारी सिचुएशंस ऐसी है इसीलिए हम घर पे मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पीस ऑफ माइंड पे सुन लेते हैं। ये अंतर तो आया ना, इतना स्लोली ये चीजें हमारे अंदर आ जाती है जो पता भी नहीं चलता है, कि कब हमारे उस निश्चय को माया ने हिलाया, कब हम थोड़ा डाउन हुए और माया इतना ही इंतजार करती है कि थोड़ा इसकी अवस्था डाउन हो जाए तो मेरी एक थप्पड़ काफी है। कोई मजबूत चीज को हिलाना मुश्किल है, लेकिन जिसकी जड़ थोड़ी सी हिल जाती है उसको तो एक धक्का भी गिरा सकता है। और माया क्या है? अपने ही कमजोर संकल्प है जो परिस्थितियों के बीच सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण कमजोरी रह जाती है, और वो कमजोरी के कारण हम उस परिस्थिति में बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं और कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, और फिर लगता है कि मेरे सामने छोटी सी बात भी बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में है। हमारे ही कमजोर संकल्प, हमारे ही कमजोर संस्कार, और इसीलिए अपनी अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहली चीज या सबसे पहला पुरुषार्थ जो मुझे करना होगा, वो मुझे अपनी बड़ी सच्चाई और सफाई के साथ अपनी क्लीनिंग करनी होगी। लोग बाह्य स्वच्छता की बातें उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी इंटरनल सफाई करनी होगी, इंटरनल क्लीनिंग करनी होगी, ताकि कोई नए जर्म्स, कोई नया वायरस जो मेरी अवस्था को बिगाड़ने के काबिल हो अब पैदा न हो सके। ये सारी चीजें कहाँ पैदा होती है? ये सारे जर्म्स जो पैदा होते हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? गंदगी में पनपते हैं। इसीलिए लौकिक में भी कहते हैं अपने घरों को, अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ बनाओ। अगर बाह्य स्वच्छता आएगी तो अपने आप तन स्वच्छ बनेगा। अब हमें सिर्फ तन की स्वच्छता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी अवस्था की मजबूती की बात कर रहे हैं। और अवस्था की मजबूती अर्थात किसी भी छोटी या बड़ी चैलेंज के बीच हम डिस्टर्ब ना हो, ये है अवस्था का अचल होना या अवस्था का दृढ़ होना। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि परीक्षाएं तो अंत तक आएगी, माया अंत तक हमें टेस्ट करती रहेगी। इतना जल्दी हमें पास का सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। और विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस जो हमारी अवस्था को डिस्टर्ब करने वाले हैं हमारे सामने समय अनुसार आ भी रहे हैं और आने भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे सामने, कोई शेयर कर सकता है? हमारी अवस्था को थोड़ा भी डिस्टर्ब करने वाले चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है जी? शरीर के कर्म भोग बीमारी के रूप में, और हमारे अपने स्वभाव संस्कार जो हम इतना सहज बदल नहीं सकते हैं, और अपने लौकिक संबंधों के द्वारा आने वाली चुनौतियां, और जी नौकरी में, जॉब में, माना जहां भी हम कार्य कर रहे हैं वहां की सिचुएशंस से, और प्रकृति के द्वारा भी चैलेंजेस आनी है और माया किस रूप में आएगी है? माया किस किस रूप में आएगी? कहीं ना कहीं बुद्धि आकर्षित हो जाती है, आलस्य या अलबेलापन के रूप में माया आती है, लौकिक या अलौकिक संबंधों से भी आती है, ब्राह्मणों से भी माया आती है जी। इच्छाएं और अपेक्षाएं ये भी माया का एक रूप है, सूक्ष्म कामनाएं कहीं ना कहीं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर माया को स्थूल से सूक्ष्म में लेते जाओ तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारी अवस्था को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है, और जैसी अवस्था डिस्टर्ब होती है सबसे पहला उसका असर हमारी व्यवस्था पर आता है। जिस कारोबार में हम लगे हुए हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फैमिली को संभालना है, चाहे माताएं घर परिवार को संभाल रही हैं, जहां भी हमें, जैसे ही मन की स्थिति बिगड़ती है तुरंत हमारे कार्य कारोबार व्यवस्था और व्यवहार पर उसका असर आता है। जैसे ही हमारी व्यवस्था बिगड़ती है वैसे छोटी सी परीक्षा और छोटी सी चुनौती भी हमारे लिए धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि पहले एक तरफ से परीक्षा आई, अभी वो परीक्षा चारों दिशाओं से, क्योंकि जहां जहां इम्बैलेंस हुआ, जहां जहां कमजोरी हुई, जहां जहां हमने कुछ मिसिंग किया, वो सब तरफ से हमारे पास अभी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए कभी कभी हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जो कोई दरवाजा खुला दिखाई नहीं दे रहा है, और हम सब कुछ छोड़ देते हैं। उस समय हमें लगता है पता नहीं बाबा भी कहाँ छिप गया है, मैं कितना भी बाबा को याद कर रही हूँ लेकिन जैसे वो बल नहीं भर रहा है, और व्यक्ति धीरे 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 डाउन होती है। हमारी अवस्था को इफेक्ट करने वाली जो बाह्य और आंतरिक बातें हैं, इसके लिए बाबा ने एक लाइन में बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आएगा पांचों तत्व और पांचों विकार एक साथ हलचल मचाएंगे। मिसाल आज हमें कितनी सारी बातें देखने को सुनने को मिलती है, सरेआम देखो आज कितने रेप्स हो रहे हैं, काम विकार की अति, आज घर घर में छोटे छोटे संगठनों में पैसों की थोड़ी सी लेन देन में लोग एक दो को मार रहे हैं, घर में छोटी छोटी, अभी मैं आ रही थी उस दिन सुबह सेंटर से बहुत नजदीक में एक बहुत बड़ा साहूकार करोड़ों का आसामी, सुबह सुबह मैं तो 8 बजे निकली सेंटर से यहाँ आने के लिए, तो क्लास पूरा होते ही मुझे किसी भाई ने समाचार सुनाया, बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पर वो भाई रहता है, सुबह सुबह उठ करके उसने अपने 2 बेटों और अपनी वाइफ सबको शूट कर दिया। और शूट करके वो सीधा पुलिस स्टेशन पे जाके खड़ा हो गया कि मैंने सबको मार डाला। अब बात क्या थी? छोटी सी कुछ बात थी। वो अपनी तरह से अपनी लाइफ को कुछ जीना चाहता था और फैमिली वाले उसको रोक रहे होंगे, बस इतनी सी बात थी। और सुबह सुबह सबको शूट कर दिया। क्रोध भी ज्वाला के रूप में बाहर आ रहा है, जो खुद अपने को व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पांचों विकारों की अति, लगाव, किसी को किसी से लगाव हो जाता है और वो व्यक्ति अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो आजकल खूनामर्की करने में देरी नहीं करते हैं। न्यूज़पेपर्स को पढ़ो, दिमाग काम नहीं करे। पढ़ने के बाद लगता है कि अभी दोबारा इसको पढ़ने की, ये सब समाचार को सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो पांचों विकार की अति हमें दिख रही है, पांचों तत्व की हलचल भी सामने आनी है। ये कुछ डराने के लिए बाबा ने नहीं कहा है, लेकिन मानसिक रूप से आने वाली परिस्थितियों के बीच हम स्वयं को पहले ही मजबूत कर ले। पांचों तत्व, धरती हिलेगी। हमने अभी तक कितने भूकंप के झटके ऐसे देखे, जो बड़े पैमाने के झटके थे उससे कितने बड़े बड़े सारे के सारे शहर खत्म हो गए। उसी तरह पानी की सुनामी, आज से 100 साल या 50-60 साल पहले के जमाने के लोगों से पूछो, कहीं सुनामी का शब्द सुना था? आजकल थोड़ा भी बड़ा भूकंप आता है तुरंत सुनामी को प्रेडिक्ट कर देते हैं। सुनामी माना सागर में बड़े पैमाने पर हलचल मचना और पानी का बहुत जोर से उछलना, और कभी कभी वो उछल करके अंदर भी आ जाता है जमीन में। और अगर सागर उछलता है तो वो बड़े पैमाने का नुकसान करता है। तो कहां जल तत्व, कहां अग्नि तत्व, कहां धरती तत्व, अलग अलग तत्व, कहीं वायु। आप देखो साइक्लोन्स जब आते हैं कितना नुकसान करते हैं। अभी आप लोग सब शायद अनुभव करके आए होंगे, दिल्ली में डस्ट वाला साइक्लोन जब आया तो क्या हालत थी, सबने अनुभव किया ना। थोड़ी टाइम के लिए भी जो रास्ते पर थे उसमें से कितने बेचारे डस्ट के कारण कुछ धुंधला गया, दिखाई नहीं दिया, और कोई कहां टकरा गया, कोई क्या हुआ, कोई क्या। अभी तो एक एक तत्व हलचल मचा रहा है। अगर इसमें से दो तत्व, तीन तत्व या पांचों तत्व एक साथ हलचल मचाए तो आप सोचो कितनी अफड़ा तफड़ी मच सकती है, कितनी हलचल मच सकती है। तो चैलेंजेस बहुत है। अब हम चलते उस और की इन सब चैलेंजेस के बीच हमारी अवस्था को हम मेंटेन करके रखें, हमारी अवस्था का संतुलन बनाए रखे, इसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या हो। सबसे पहली बात, अवस्था की दृढ़ता के लिए मनोबल बहुत स्ट्रांग चाहिए, विल पावर। मनोबल को विकसित करने का सबसे बड़े से बड़ा साधन कुछ बातों को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, हमारे लिए कोई भी परिस्थिति शॉकिंग हो ही नहीं। एक्सेप्टेंस को बढ़ाते चले कि बाबू ने कहा है अंत तक माया आनी है और कोई भी रूप से आनी है, इसीलिए मुझे सदा अलर्ट होकर के चलना है। माया क्यों आई या माया कहां से आई ये सोचने के बजाय, माया के आने के बाद माया को भगाने के लिए मैं क्या करूं, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते चले। ये तो मैंने कभी सोचा ही था कि एकदम नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु सोचा ही नहीं था। नहीं, पहले से मैं अपने आप को तैयार करूं। आप देखो, एक स्टूडेंट परीक्षा नजदीक आने पर स्ट्रांग कब रह सकता है? जिस स्टूडेंट ने पहले से अच्छी तरह जम के पढ़ाई की है, उसको जब पढ़ने का स्पेशल टाइम मिला परीक्षा से पहले, स्टडी टाइम, उसमें उसने खूब मेहनत की। और मेहनत क्या करते आजकल स्टूडेंट्स, जब एग्जाम नजदीक होती है तब जो लास्ट मेहनत होती है वो क्या होती है, गैस पेपर्स सॉल्व किए जाते हैं ना। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, गैस पेपर्स सॉल्व करते हैं। ऐसे परीक्षा से पहले अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए हम भी गैस पेपर्स को सॉल्व करें। कभी हम बाबा के सामने बैठे और संकल्प करें कि मानो मैं यहाँ बैठी हूँ और धरती हलचल करती है तो मैं क्या करूँगी, और मनोबल के विकास के लिए बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। मैं आपको बहुत पीछे ले जाती हूँ, बहुत वर्षों पहले, कोई कोई को ध्यान में होगा, भोपाल में गैस कांड हुआ था। उस समय अपना सेंटर भी वहां था और काफी नजदीक था वो जगह से। लोगों ने फोन करके कहा बहन जी सेंटर छोड़ के भागो। वहां जो बहन जी थी उसने सोचा कि सेंटर छोड़ के भाग के भी कहां भागेंगे, अगर सब तरफ गैस फैल रही है तो भाग भाग के बहने थी कहां तक भागेंगी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप बाबा के कमरे में जाके बैठ गई। सुना भी होगा कईयों ने, बाबा के कमरे में जाके बैठी। वहां उनको ये टचिंग आई, चाहे किसी ने फोन किया क्या किया मुझे आज इतना याद नहीं है, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर रही। उस समय जो टचिंग मिली या जो बात कही गई, उनको ये टचिंग मिली कि कंबल को भिगो दो और वो ओढ़ के बैठ जाओ, और उन्होंने वैसा ही किया। अभी गीले कंबल के कारण गैस जो आ रही थी वो डाइल्यूट होती गई, इसीलिए दूसरों को गैस का जितना असर हुआ उतना असर उन बहनों को नहीं हुआ, और सुबह वो बहनें इतनी स्वस्थ होकर के बाहर आई। परीक्षा तो बहुत बड़ी थी उस समय, अब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अपने मनोबल को बनाए रखने का साधन क्या रहा, बाबा से मिली हुई टचिंग। राइट टाइम पर अगर राइट टचिंग को मैं कैच कर सकती हूँ तो वो राइट टचिंग मुझे परिस्थिति से बाहर निकाल देगी। और ये टचिंग हर एक बाबा के बच्चे को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, बुद्धि की लाइन। उस समय अगर ये याद आया फलानी मेरी बहन क्या कर रही होगी, फलाने मेरे माता पिता क्या कर रहे होंगे, मेरा हस्बैंड ऑफिस में वो क्या कर रहा होगा, और उसके साथ कनेक्शन करने के कोई प्रयास में बुद्धि डाइवर्ट हो गई तो राइट टचिंग नहीं मिलेगी। बुद्धि की सफाई चाहिए, बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए, बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ बहुत क्लियर कट हो। तो हमारे पास आने वाली कोई भी परिस्थिति, चाहे वो अपने संस्कारों की है, चाहे वो व्यक्तियों से आई हुई परीक्षा है, चाहे वो बाह्य साधनों से आई हुई परीक्षा है, कुछ भी आ सकता है, जी इविल सोल्स के रूप में आ सकती है, बहुत और आगे अंत में जाओ तो मिसाइल्स भी गिरनी है, बहुत कुछ होना है। अभी तो जहां हम बैठे वहां मिसाइल नहीं गिरी है, दूर मिसाइल गिरी है और हम सारे समाचार सुन रहे हैं कि गिरी है मिसाइल चारों तरफ, आगे आगे लोग खाक हो गए हैं सुन सुन करके। एक ही एक बात को बहुत टाइम तक सुनो तो भी उसका असर हमारी अवस्था पर आ जाता है, एक भय पैदा हो जाता है। तो हम किसी भी परीक्षा और परिस्थिति को सुनते हुए भी हम अंदर से भयभीत ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमारे पास योग का बल चाहिए। जो बुद्धि की सफाई है, क्लियर कनेक्शन है, बाबा की टचिंग है, ये जितनी भी बातें हैं ये डायरेक्ट योग से कनेक्टेड बातें हैं। और ये योग का बल हमें अभी भरना होगा। हम चाहें कि उस समय हम योग का बल अपने अंदर भरने जाएं, उस समय योग का बल नहीं भरेगा। अगर बहुत काल का योग का मेरा अभ्यास ही नहीं होगा तो ऐसे समय पर योग लगेगा ही नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम ही यहाँ आएगी, योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है और आदत भी नहीं है। बुद्धि को भटकने की आदत है, एकाग्र करने की मैंने आदत बनाई ही नहीं है, तो परिस्थिति के बीच बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? अगर नॉर्मल स्टेज में भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है तो परिस्थिति और परीक्षा के बीच बुद्धि की एकाग्रता कैसे आएगी? मानो अभी हम यहाँ मधुबन में बैठे हैं, घर परिवार काम काज सब कुछ वहां छोड़कर आए हैं ना, यहाँ बैठकर आप कुछ भी कर सकते हैं? बेटे को टाइम पर खाना नहीं मिला है, आप यहाँ से खाना बना के वहां भेज सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। कहाँ कहाँ चेक करो, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। जो बुद्धि के लगाव के स्थान और साधन होंगे बुद्धि वहां जाएंगी। समय पर जहां भी हम हैं बुद्धि को समेट पाना, ये तो योग की पहली कंडीशन है। और जब तक बुद्धि की एकाग्रता नहीं है तब तक बाबा से हमारा कनेक्शन भी अटूट नहीं है, लंबे समय का नहीं है। अभी हम आधा घंटा योग में बैठते हैं, मुश्किल मन बुद्धि को एकाग्र करते करते ही हमारी 20 मिनट निकल जाती है, 5 मिनट लास्ट में मुश्किल बुद्धि एकाग्र हुई इतने में व्हाइट लाइट हो जाती है। तो योग के द्वारा मुझे जो अपने में ताकत भरनी है, शक्ति को स्टोर करना है, वो तो अभी के योग से हो नहीं रहा है। इसीलिए हमें अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। कल सूरज भाई जी कह रहे थे ना, कम से कम 4 घंटा योग का अभ्यास, 4 घंटे तक ले जाओ। मैं चिंतन कर रही थी सबके लिए कारोबार के बीच 4 घंटा बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन क्यों हमें लंबे समय के लिए योग में बैठना जरूरी है, क्यों ये अभ्यास जरूरी है? क्योंकि लंबे समय का ये अभ्यास ही हमें अंत में बुद्धि को एकाग्र करने में काम में आएगा। और इसीलिए पुरुषार्थ से, मेहनत से हम जब भी योग में बैठे, युद्ध में हमारा समय न जाए, हम जल्दी से जल्दी बुद्धि को एकाग्र करके शारीरिक अवस्था को अनुभव कर सके, इसके लिए जो दूसरा साधन है, जो हमारे मनोबल को भी बढ़ाएगा और हमारी एकाग्रता में भी वृद्धि लाएगा, उसका दूसरा साधन है ज्ञान में परिपक्वता। नॉलेज तो हम बाबा से रोज सुन रहे हैं, मुरलियां रोज सुन रहे हैं, क्लासेस ढेर सारे सुन रहे हैं, लेकिन जब तक हमने नॉलेज में परिपक्वता को नहीं अनुभव किया है, मैच्योरिटी नहीं आई है, नॉलेज को हमने हजम करके अपनाया नहीं है, तब तक हम परिस्थितियों के बीच नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिसाल ड्रामा का जो टूल बाबा ने दिया है, साधन दिया है, ये बहुत शक्तिशाली साधन है, लेकिन पहले मेरा उसमें विश्वास तो हो। बाबा ने एक बात गारंटी के रूप में दी है कि मेरे किसी भी बच्चे का ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता। अभी हम सबका हिसाब किताब है, पाठ है, बहुत सारी बातें सामने, कर्म भोग, कर्म बंधन, बहुत सारी परिस्थिति के रूप में आनी है, लेकिन क्या मैं ड्रामा के फ्यूचर को देख सकती हूँ? हम गलती क्या करते हैं, हम ड्रामा के वर्तमान को देखते हैं, आज मेरा क्या अच्छा हुआ, लेकिन आज मेरे पास जो भी बात आई, प्रॉब्लम आई, परिस्थिति आई, चैलेंज आई, चुनौती आई, वो कल मेरी अवस्था के लिए क्या लेकर के आई है, वो हम नहीं देख पाते हैं। कहाँ वो वैराग्य वृत्ति को डेवलप कराएगी, जिस संबंध में हमारा बहुत अटैचमेंट है, वो परीक्षा हमारा अटैचमेंट तुड़वाएगी। कहाँ हम बहुत अपेक्षा और सहारा बना के बैठे हैं, वो सहारा टूटने से हम बाबा के और नजदीक जाएंगे। अब तक हम व्यक्तियों को सहारा बना के बैठे, जब प्रॉब्लम आएगी मुझे सबसे पहले इनकी याद आती है, इनकी याद आती है, इनकी याद आती है, तुरंत मैं फोन लगाती हूँ, तुरंत शेयर करती हूँ। अब वो जिस दिन मेरा हाथ छोड़ देंगी तो मेरा बुद्धि योग कहाँ जाएगा, फिर तो सिवाय बाबा की कोई राह ही नहीं। तो सहारे टूट रहे हैं, ये भी हमारे कल्याण के लिए है। हमने किसी में बहुत अपेक्षाएं रखी, भावना रखी, वो भावनाएं पूरी नहीं हो रही है, हमारे वैराग्य को परिस्थिति बढ़ा रही है, और थोड़ा भी वैराग्य कहां से आएगा तो बुद्धि कहां डाइवर्ट होगी। कौन सी परिस्थिति में मेरा क्या कल्याण भविष्य में छिपा हुआ है, मुझे वो ढूंढना है। आज को जब बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता, तो बाबा का शक्तिशाली हाथ, अगर मैं बाप का बच्चा हूँ तो छत्र छाया बन करके बाबा का हाथ सदा मुझ आत्मा के सिर पर है, मुझे ये फीलिंग बढ़ानी है। बाबा ने कहा है कि अगर दिल से मेरा बाबा कहा का, कितने स्लोगन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, दिल से मेरा बाबा कहो तो बाबा बंधा हुआ है। दुनिया के लोग प्रॉमिस देकर के मुकर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी प्रॉमिस से कभी भी मुकर नहीं सकता है। क्या बाबा की नॉलेज में मेरा इतना डीप फेथ है? तो ज्ञान की परिपक्वता किस आधार पर आएगी? निश्चय के आधार पर। या अभी भी मुझे होता है, फलाने साधु के पास गए, फलाने महात्मा के पास गए, फलाने सत्संग में गए, वहां भी वो ही बातें थी जो बाबा के ज्ञान में सुनने में आती है। इसका मतलब अभी तक हमने भगवान को पहचाना बाबा की एक एक बात को लेकर के चाहे योग में बैठे हैं, कोई भी एक ही बाबा के पॉइंट को लेकर उसके चिंतन में डीप चले जाओ, गहराई में चले जाओ। आज मुरली में पहले पहले रोज बाबा मीठे बच्चे कहता है, आज क्या शब्द यूज किया? हे लाल, लाल बच्चे, लाल मीठे लाल है। अब इस चीज को थोड़ा सा सील करके देखो, कितना बाबा के दिल में वो मुरली शुरू करने से पहले बच्चों के प्रति वो भावना उठी होंगी, तब रोज मीठे बच्चे कहते आज लाल निकला और प्यार का शब्द निकला। कोई एक बात को पकड़ लो मुरली की और उसकी गहराई में खुद को ले जाओ, क्या कहना चाहते हैं बाबा मुझे। हम लोग कभी कभी और डिस्टर्ब हो जाते हैं, आज तो मेरे पर ही मुरली चली, आज सारी मुरली में बहन जी ने मेरे ऊपर ही ताना मारा। अभी बहन जी को मेरे मैं ही दिखाई देती हूँ क्या? क्या बहन जी की सारी जीवन मेरे एक से ही जुड़ी हुई है क्या, जो मैं एक ही दिखाई देंगी और रोज बहन जी मुझे ही ताना मारेगी? हम ये गलतियां करते हैं। इसको बहुत बड़ी भावना से आप सुनना शुरू करो कि जो भी बात बाबा की मुरली के साथ साथ मुझे मिल रही है, हो सकता है आज वो कमी मेरे में नहीं है, आज वो समस्या मेरे साथ नहीं है, लेकिन बाबा पहले से मुझे अलर्ट कर रहा है कि ऐसी कोई भी बात आए तो उसमें मैं सावधान होकर के चलूं। तो तीसरी बात जो हमारी अवस्था को मजबूत करने के लिए चाहिए वो है सकारात्मक ऊर्जा। अगर मेरे आसपास सकारात्मक ऊर्जा है, अर्थात मेरा ऑरा पॉजिटिव ऑरा है। अभी तीन चार दिन पहले की एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर चोर भी आपके पास आ जाए तो उसको लाइट दिखाई दे, आपका शरीर नहीं दिखाई दे, लाइट दिखाई दे, आपकी तिजोरी नहीं दिखाई दे, लाइट दिखाई दे, ये क्या है? हर परिस्थिति और हर बात में अगर मेरा अप्रोच, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सकारात्मकता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये सब नकारात्मकताएं हैं। सकारात्मकता अगर मेरा अप्रोच है तो एक ही दिशा में मैं आगे बढ़ूंगी और वो है सॉल्यूशन। होना था सो हो गया, अब क्या हो सकता है। जो सिचुएशन आनी थी आ गई, वो मेरी नेग्लिजेंस से आई, दूसरों के अलबेलेपन से आई, दूसरों के केयरलेसनेस से आई, कहीं से भी आई, आ तो गई ना। आने के बाद कहां से आई और क्यों आई ये सोचने के बजाय अभी इसको खत्म कैसे किया जाए, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। कभी ये नहीं सोचू कि कुछ हो ही नहीं सकता है। जब ऐसा अंधकार सामने आ जाए उस कड़ी बाबा के सामने जाके बैठ जाओ, बुद्धि को प्लेन कर दो, बाबा जो भी है ये है, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। लोगों के पास इतनी क्लियर कट टचिंग्स के अनुभव है और इतनी बाबा केयर करता है हमारी आवश्यकता के समय, लेकिन वो बिना अनुभव के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। चाहे वो शरीर का कर्म भोग है, हमारी सकारात्मकता क्या हेल्प करती है। मैं मेरा अपना एक रिसेंट अनुभव सुनाती हूँ। मुझे कहीं ट्रेनिंग कराने जाना था, सुबह 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी, सेंटर से लगभग 6:15 निकलना था। रात में पूरा बॉडी स्टिफ हो गया, एकदम बैक पेन बढ़ गया और मैं स्ट्रेट नहीं हो पा रही थी। मैं उठी, तैयार हुई, यूं झुक झुक कर बुढ़ियों की तरह मैं चल रही थी। मैं सीढ़ी उतर करके बाहर निकलने के लिए पहुंची, क्लास चल रही थी, लोगों ने देखा मैं यूं चल रही हूं तो नेचुरली भाई बहनों को अपनी बहनों के लिए प्यार होता है, 2-4 उठकर आए, बहन जी कैसे जाएंगी आप। मैंने कहा कोई कुछ बोलना नहीं, नहीं जाओ ये कोई मुंह से बोलना नहीं, क्योंकि आप कितना भी कहो मैं आज जाने वाली हूं। क्योंकि 3 जगह पर ट्रेनिंग थी और मेरा एक का न जाना सारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता था, मैं अकेली जा रही थी ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने सबको खाली इतना ही कहा, मुंह से कोई कुछ बोलना नहीं, नहीं जाओ। कोई दौड़ करके गया मेरे लिए पट्टा लेके आया और मैं ऐसे ही ऐसे प्लेन में चढ़ के गई। देखो क्या हेल्प मिलती है। मेरा एक ही संकल्प था कि सेवा मेरे कारण डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और मुझे जाना है। मैं जा रही थी कहीं और, मुझे फ्लाइट से उतर के हैदराबाद उतरी थी और मुझे जाना था गुलबर्गा, तो फ्लाइट से उतरकर ट्रेन में जाना था, तो ट्रांजिट का मेरे पास 3-4 आवर्स था। तो ऐसे ही मेरी हैदराबाद कुलदीप बहन जी से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इतना घंटा तुम स्टेशन पे क्यों बैठेगी, अपना शांति सरोवर नजदीक है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं भी उनकी बात को मान करके चली गई कि चलो 3-4 घंटा स्टेशन पे बैठना, इससे तो अच्छा है हम बाबा के घर में जाएं। अब वहां मैं गई तो देखो भगवान की प्लान क्या होती है। बाजू की कोई सिटी से एक फिजियोथेरापिस्ट आया था, उसके पास एक अपना छोटा सा मशीन भी था, कोई इलेक्ट्रिक का मशीन था। जैसे ही कुलदीप बहन ने मेरे को ये बैक के इतने प्रॉब्लम में देखा तो कहा कृति आओ यहाँ मेरे पास फिजियोथेरापिस्ट अभी आया हुआ है, तुम थोड़ी ट्रीटमेंट ले लो। उसने मुझे 1 घंटा ट्रीटमेंट दी, 50% मेरा पेन खत्म हो गया। वहां से मैं ट्रेन से गुलबर्गा पहुंची, वहां कोई बहन प्रोफेशनल ऑयल मसाज वाली मुझे मिली, اس نے مجھے آئل مساج کر کے دیا، میرا پٹا بھی گیا اور درد بھی گیا. بات تو بڑی کڑی تھی، اس سمے تو میں یوں بڈھی کی طرح جھک کر کے چل رہی تھی، لیکن صرف ایک چھوٹی سی دڑھتا نے کہ جانا ہے بابا کی سیوا میرے کارن ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، یہ کیول ایک سنکلپ سے بابا کی اتنی مدد مجھے ملی جو میں ساری سیوا کے پروگرامز اچھی طرح سے پورا کر کے واپس آئی. اگر ایسی شکتیشالی سوچ سے، سکاراتمک سوچ سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے ہمیں بابا کی مدد کے ڈھیر سارے انوبھو ملتے جائیں گے. انوبھو ہی ہمیں مضبوط بنائیں گے، انوبھو ہمیں بابا کے ساتھ کی ایسے ونڈرفل انوبھو کرائیں گے جو ہم چاہیں تو بھی بابا کو بھول نہیں سکتے. اب آپ سوچو جس کے جیون میں ایسے دو چار پانچ دس بھی انوبھو مل جائے، بابا کبھی بھول سکتا ہے؟ یوگ کا بل اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا، وہ سنیہ چمبک بن جائے گا اور وہ اپنے آپ بل بھرنے کا کام کر لے. پلس دوسرا فائدہ، جہاں جہاں سیوا کر کے آئے اتنی آتماؤں کی دعائیں ملی تو جمع کا کھاتا ہوا. اپنی اوستھا کو ہم مضبوط صرف میں آتما ہوں میں آتما ہوں میں آتما ہوں صرف اتنا رٹنے سے نہیں ہوگا، اوستھا کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی آپ کو پریکٹیکل میدان میں سیکو. پرستھتیوں سے ڈر جانے کے بجائے پرستھتیوں کے بیچ بھی اپنے لکش کی اور بڑھنے کا درڑھ سنکلپ ذرا بھی لوز نہیں کرو، اپنے آپ راستہ کھل جائے گا، اپنے آپ راستہ بن جائے گا، اپنے آپ باتیں بدل جائے گی، ہماری کلپنا میں بھی نہیں ہوں گی، ویکتیاں بدل جائیں گی، پرستھتیاں بدل جائیں گی. میں اور آپ پرسنلی وہ نہیں کر سکتے ہیں، بابا بیٹھا ہے، آگے جو بھی باتیں آنی ہیں اس کو کلیئر کرنے کا کام وہ آپ ہی کر کے دے گا. یہ ایکسپریمنٹس کرو. میتھمیٹکس میں ایک سب سبجیکٹ ہوتا ہے الجبرا، اس میں پہلے جواب نہیں ملتا ہے، پہلے انمان سے چلنا پڑتا ہے. انمان کرو ایکس برابر، اور پھر پورا داخلہ پورا کر کے لاسٹ میں جواب ملتا ہے. ایسے ہماری لائف میں بھی ایکسپریمنٹس کرو. بابا نے یہ بات کہی ہے، مانا پرفیکٹ ہے، مجھے صرف پورے نشچے کے بل سے اس کے ریزلٹ کو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. ذرا بھی سنشے کا بیج نہ آوے. اسی لیے بابا بار بار کہتا ہے نشچے بدھی وجینتی سنشے بدھی، جہاں تھوڑا بھی سنشے کا بھی جایا. جیسے اپنے آپ میں مانو ابھی ہم سب کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، اگر تھوڑا بھی سنشے آتا ہے کہ ایسی پروشارتھی جیون میں دیوتا کیسے بنیں گے، تھوڑا بھی سنشے کا بھی جایا تو ہم محنت کرنا چھوڑ دیں گے. پرستھتیاں بدلنے پر ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنے سمے کا گیان ہے، جس بات کی کمی ہے اچانک سے کوئی ایسے سچویشنز آ جائیں گے جو ہم کو ویراگیہ ورتی بھی دلا دیں گے، کیونکہ کئی ورشوں کا ہمارے پاس ابھیاس ہے. हो सकता है लास्ट में हमें बाबा की ऐसी एक मदद मिल जाए और हम लिफ्ट हो जाएंगे। लिफ्ट करने तो बाबा आया है ना, उसने तो पक्का वायदा किया है कि मैं दो चार को नहीं सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, जो मेरे लायक बच्चे हैं उनको लायक बनाकर ले जाऊंगा। लायक नहीं बनाएगा तो सतयुग में देवता बनने वाले बाकी कौन होंगे? हम नहीं होंगे तो बाकी कौन होंगे? अभी और नई आने वाली प्रजा तो हमसे भी वीक आने वाली है। दादियां जितनी मजबूत है उतने हम सब नहीं है, और जितने हम सब मजबूत है पीछे आने वाली लोग आत्माएं और भी कमजोर होंगी। तो हमें समय पर लिफ्ट नहीं मिलेगी तो बाकी किसको लिफ्ट मिलेगी? लेकिन हम थक जाते हैं, हम परिस्थितियों में हार खा लेते हैं, छोटी छोटी बात आते ही हम अपने में से विश्वास गवा देते, अब मेरे से नहीं हो सकता। जरा सी बीमारी आई, कहां साकार बाबा की मुरलियों में जरा स्पिरिट तो देखो। अरे गंगा जल मुख में हो, गंगा का किनारा हो, तब प्राण तन से निकले, और आज जरा सी हमारे पास बीमारी आती है आज क्लास में जाने की छुट्टी। आज बहुत सिर में दर्द है, आज बहुत पांव में दर्द है, आज क्लास की छुट्टी, आज हम सुन लेंगे मुरली को, पढ़ लेंगे मुरली को, मुरली मिस नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ो। जहां से ऊर्जा मिल रही है, जैसे परीक्षा आती है हम ऊर्जा के स्रोत को छोड़ देते हैं और अपने कवच में घुस के बैठ जाते हैं, तो ऊर्जा मिलेगी कहां से? संगठन ये ऊर्जा मिलने का साधन है। कभी भी संगठन को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। छोड़ करके बैठने से अगर मेरा मनोबल इतना मजबूत होता तब तो बात मेरे पास आती नहीं। अगर मेरी अवस्था को उसने इफेक्ट किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा मनोबल कमजोर है। कमजोर मनोबल को शक्तिशाली बनाने का जो स्रोत है वो बाबा, योग, संगठन है, वही हम छोड़ देते हैं। कई बार कईयों से सुना होगा मेरे पास अभी बहुत प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाए ना फिर हम सेंटर पर आएंगे। अरे जब प्रॉब्लम से तब तो मुझे ज्यादा जरूरत है। ऐसी छोटी 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 बातों में हम या तो केयरलेस हो जाते हैं, या डोंट केयर करते हैं, या टाइम बीइंग बाबा के महावाक्यों से हमारा फेथ डिस्टर्ब हो जाता है। और थोड़ा सा स्थिति में डिस्टर्बेंस आई, बैलेंस बिगड़ा, गलती पे गलतियां होती जाएंगी, परीक्षा और परिस्थिति हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आज से यहां भट्टी से एक बात में अपने को स्ट्रांग करके जाना कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी अगर मेरे पास आती है तो मेरा बाबा मेरे साथ बैठा है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए वो हमें अकेला छोड़ दे। उसने हमें इतना ट्रेन किया, उसने हमें इतना पढ़ाया, उसने हमें इतना तैयार किया, हमको भी लगता है अभी हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो बाबा कभी कभी छोड़ देता है कि ट्राई करके देखो कि अकेले लड़ने के लिए कितने सक्षम हो। छोड़ देता है बाबा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में वो बैठा है। صرف اس گھڑی ایک ہی کام کرنا ہے. ہم دل سے کہے بھلے بابا ہم کو لگتا ہے دور چلا گیا کہیں مدد نہیں مل رہی ہے, دیکھ نہیں رہا ہے مجھے بابا, پھر بھی بابا کو کہو بابا تو میرے سے کتنا بھی دور جا دور آپ ہو نہیں سکتے ہو. ابھی سنگم میں ہم نے 63 جنم بھکتی کی بھگوان کو پانے کے لیے. ابھی لاسٹ جنم میں اگر تو مجھے ملا ہے تو کتنا بھی آگے پیچھے ہو جا ہم چھوڑنے والوں میں نہیں ہے. یہ حوصلہ چاہیے. وہ بھی بندھا ہوا ہے کہاں جائے گا, تھوڑی دیر ہم کو میدان میں چھوڑ بھی دے گا, ذرا گرنے بھی دے گا ہم کو, لیکن پھر آپ ہی اٹھا بھی لے گا, گرنے دے گا ارتھات تھوڑا بہت تھپڑ کھا لے تاکہ ہم کو بھی پتا چل جائے کہ ابھی ہم اتنا اسٹرانگ نہیں ہو گئے ہیں, ہم کو پروشارتھ کی آوشیکتا ہے. صرف یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہاں کہاں بابا ہم کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ٹائم بینگ ہے, وہ سدا کال نہیں ہے. تو مجھے بابا کی مدد, بابا کے ساتھ کے انوبھووں سے اپنے کو بھرپور کرنا ہے. تو ایک بات اپنے منوبل کو بڑھانا ہے, دوسری بات ہم نے دیکھی ہماری ایکاگرتا کے ابھیاس کو اسٹرانگ کرنا ہے, تیسری بات ہماری سکاراتمک سوچ, سکاراتمک ارجا اور سکاراتمک اورا کو ہمیں بڑھانا ہے, چوتھی بات کسی بھی پرستھتی کے بیچ مجھے میری بدھی کی لائن کو کلیئر رکھ کے چلنا ہے. ارتھات اس کو میں دوسرے شبد میں کہوں تو بدھی کے سمرپن سے چلنا ہے, ٹو مچ نہیں چلاؤ اپنی بدھی. نالج بابا کیا کہتا ہے, شریمت کیا کہتی ہے, ایسی سچویشنز کے لیے کیا باتیں بابا نے انڈر لائن کرائی ہے, نالج کی پریپکوتا, گیان میں شریمت میں ہمارا نشچے, یہ چار پانچ باتیں ایسی ہیں جو ہماری اوستھا کو کیسی بھی سچویشنز کے بیچ زیادہ ڈسٹرب ہونے نہیں دے گی, اور اگر تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوئی تو ترنت یہ ساری باتیں ہمیں ریگین پھر سے بیلنس ہونے میں ہیلپ کرے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈسٹرب ہو بھی گئے تو بھی یہ لکش بناؤ کہ کم سے کم سمے میں ہم پھر سے اپنی اوستھا کو کیسے پکڑ لیں. جو ڈسٹرب ہونے کا سمے اور ڈسٹربنس ختم کرنے کا ڈیوریشن ہے, وہ ڈیوریشن کو کم کرتے جاؤ. یہ پرفیکٹنس کی طرف جانے کی ودھی ہے. اوم شانتی. ابھی ہم ویسے آج یوگ کے بعد سوگات ہے, ابھی ہم سب بابا کی یاد میں بیٹھیں گے, اور جب ہماری ششی بہن جی آئیں گی تو پھر ہم آگے سوگات کے کاریکرم کو شروع کریں.
اوم شانتی. ہم سبھی نے دیکھ لیا ہماری کریتی بہن ایمرجنسی لائٹ بن کے ہمارے سامنے آئی. سٹیپنی بہت کام کرتا ہے نا, تو آج ان کا رول سٹیپنی کا تھا اور بہت اچھی ٹیکنیکس بتائی. آخر 40 ورشوں کا ان کا سیوا کیندر پر سمرپت بھاو سے چلنے کا انبھر ہے, اور یہاں پر بھی بہت نمت بہت نرمان ہو کر کے جیسا بڑوں نے کہا ویسے چل رہے ہیں اور ہم سب کو سنبھال رہے ہیں. تو بہت تہے دل سے آپ کا دھنیواد ہے, دھنیواد ہے, دھنیواد.